हम इस हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहिब। हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले उनको सलाम अर्ज़ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आगा, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान का वक्त है और आपने टाइम निकाला अहले बैत टीवी के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा आपका।
आपका भी शुक्रिया जी कि आप इस वक्त
जी आगा, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल कि जिस तरह हमने पिछले दिनों मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर गुफ्तगू देखी आशूर के वाक़े के बाद, और जिस तरह शिया सुन्नी इत्तेहाद का अमली मुजाहिरा किया जा रहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, चाहे कराची की सरजमीन हो, इस्लामाबाद की सरजमीन हो या लाहौर की सरजमीन हो, लेकिन कुछ ऐसी कालअदम तंजीमें हैं, कुछ ऐसे तकफीरी ग्रोह हैं जिसकी जानब से ये जो इत्तहाद हो रहा है ये उनसे हज़म नहीं हो पा रहा। और कल इंचोली में भी जिस तरह एक वाकया किया गया और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, तो आप इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ बयान करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल रात जो चोली में वाकया पेश आया जिसमें 7 के करीब बेगुनाह लोग शहीद हो गए और 35 के करीब जख्मी हैं। इसमें ज्यादातर हमारे तसन्न भाई थे और 2 अहले तशय्यो हैं जो शहीद हुए हैं। और यूं दुनिया ने देख लिया कि ये जो दहशतगर्द हैं ये शिया और सुन्नी दोनों के दुश्मन हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर हर पाकिस्तानी के दुश्मन हैं। इन्होंने मस्जिद पर, इमामबाड़गांव पर, इबादतगांव पर, चर्चेस पर, फौज पर, पुलिस पर, बाजारों में हर जगह इन्होंने हमले किए हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मन, इंसानियत दुश्मन है। और ये गुज़श्ता दिनों में जो पाकिस्तान में अहले तशय्यो और अहले तसन्न उलमा ने मिलकर इनके मुकाबले में स्टैंड लिया, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी मसला नहीं है।
बिल्कुल
ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्दों के जालिमों के आलाकार लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम करते हैं। और किसी पाकिस्तानी को जो वतन से वफा है उसे एक आंख नहीं देख पाते। लिहाजा पाकिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह शिया और सुन्नी इकट्ठे हैं इनके मुकाबले में, और ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हैं जिन्होंने मुल्क को यरमार बनाने की कोशिश की है। और शिया और सुन्नी और पाकिस्तान के मजलूम आवाम, चाहे वो ईसाई हो चाहे हिंदू हो सिख हो, वो भी इनके साथ हैं और
बिल्कुल
एक शीशा पले हुई दीवार की तरह इस जुल्म के मुकाबले में स्टैंड लिए हुए हैं। जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने शिया और सुन्नी ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था, आज वतन को बचाने के लिए भी हम इकट्ठे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे हुक्मरान, हमारे रियासती इदारे और बाज़ ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो दहशतगर्दों के मुकाबले में वाज़ह स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग हमारे फौजी जवान जो जालिमों और दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, बाज़ ने कहा कि ये शहीद नहीं होते, दहशतगर्दों को शहादत का दर्जा दिया गया। और इन वतन का दिफा करने वालों की मौत को एक मशकूक मौत करार दिया। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक चीज वाजे हो गई है कि पाकिस्तान में कुछ वो लोग हैं जो पाकिस्तान बचाने की बात करते हैं, इंसानियत का साथ देने की बात करते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो प्रो तालिबान है, प्रो दहशतगर्द हैं, वो इन दहशतगर्दों के लिहाज उठाने की बात करते हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वाजे तौर पर पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दों के मुकाबले में उठ खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मायूस नहीं है, खौफजदा नहीं है, डरे हुए नहीं है, मैदान में हाजिर हैं।
बिल्कुल
बिल्कुल आशूरा के दिन जो वाकया हुआ और जिस तरह से उसको शिया सुन्नी मसला बनाने की कोशिश की गई, शिया और सुन्नी उलमा ने, अवाम ने मिलकर इस साजिश को नाकाम बनाया और उन साजिशियों को और कातिलों दहशतगर्दों को रसवा किया और उनके हामियों को उन्होंने भी शिकस्त से दोचार किया। आप जानते हैं कि एक काम दहशतगर्द करते हैं और उसके बाद अगला काम उनके तर्जमान जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल के पर बात सियासी इज्तमाही जमातें भी हैं जो उनके कामों के लेके आगे बढ़ती हैं। जब पिंडी का वाकया पेश आया दहशतगर्दी हुई, ये इंतहाई गहरी साजिश का नतीजा था। और उसके बाद इस वाकये के बाद आपने देखा कि मुल्क के अंदर जराव और दिलाओ गिराओ की तैयार शुरू हुई मुल्तान में, चिश्तिया में, अहमदाबाद में, पिंडी शहर के अंदर, कोहाट में, तो मालूम हो गया कि मस्जिद जलाने वाले कौन है, इमाम बारगाह जलाने वाले कौन है, बेगुनाहों को मारने वाले कौन है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक और याल्ला के मजारा, मसाजिद, स्कूल, इमाम बारगाहें, इबादतगाहें, ये कौन उड़ाने वाले थे? मालूम है ये तालिबान दहशतगर्द के हामी है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक मरले तक दहशतगर्दी का वाक्य ही अंजाम देते हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग इनके तर्जमान बनकर टीवी पर आते हैं, उनके मनसूबों को कामयाब बनाने के लिए उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनकी हमायत भी करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने अपनी बसीरत और अपने सब्र और वक्फे के जरिए दहशतगर्दों को उनके हामी टोले को पाकिस्तान में रुसवा कर दिया है, बेनकाब कर दिया है। और आज जो गुज़श्ता रहा जो कराची में खून बहा, ये शिया और सुन्नी का खून था, मिल गया खून एक दूसरे के साथ इनका। और ये बात इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान में शिया और सुन्नी इकट्ठे शहीद हो रहे हैं। शिया सुन्नी का मसला नहीं है, यहाँ पर दो ही तबके हैं, जालिम और मजलूम। शिया सुन्नी ईसाई हिंदू सिख मजलूम है, उनके मुकाबले में जालिम है। और इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल ने अगर तौफीक दी तो ये मजलूम मिलकर इन जालिमों को शिकस्त फाश देंगे।
बिल्कुल आगा, यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल जो उठता है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हुकूमती इदारे जो हैं और रियासत जो है वो अपनी रिट बरकरार रखने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, अगर पिछली हुकूमत को देखा जाए और मौजूदा हुकूमत को देखा जाए, और मौजूदा हुकूमत में कुछ ऐसे अनासिर हैं जो कि इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, तो इस हवाले से इस वक्त मिल्लत तशय्यो जो है और अहले तसन्नुन जो फॉर एग्जांपल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, उसके साथ आप काफ़ी जो है वो ये काम शुरू किया हुआ है आपने, तो इस वाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या लाए अमल तैयार किया आपने कि जो इमाम बारगाह जले और आशूर के जुलूस पे जो उन्होंने हमला किया और फायरिंग की गई, इस वाले से आपका क्या लाए अमल है कि आप हुकूमत को क्या अल्टीमेटम देंगे?
देखिए ये बात तो वाज़ह रोशन हो चुकी है कि दहशतगर्द किसी जाते और कानून और आइन को नहीं मानते, ना इनकी मॉरल ग्राउंड है, ना कानूनी, ना अखलाकी, ना आइनी, ना शरी, ये मुफसद फिलाज और मुहारिब है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत के अंदर मौजूद उनके हामी कोशिश यही करते हैं कि आवाम को कन्फ्यूज रखा जाए, हुकूमत को कन्फ्यूज रखा जाए, इदारों को कन्फ्यूज रखा जाए, जिससे इन दहशतगर्दों के हौसले बढ़ाए जा सके। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के आवाम जो इन दहशतगर्दी कार्रवाइयों के शिकार है मुश्तरका तौर पर मिलकर इनके मुकाबले में उठ खड़े हुए हैं। हम हुकूमत पर अपना दबाव बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के रियासी इदारों पर दबाव बढ़ाएंगे। एक तो इन काली बेड़ों को जो दहशतगर्दों की यामी अपने अंदर से उठा के बाहर फेंके, और दूसरा बाकायदा वाज स्टैंड लें दहशतगर्दों के मुकाबले में, और एक पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द बोर्ड इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। अगर इसमें ताखीर हुई, देर से काम लिया गया, तो ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हमारे रियासी इदारे, हमारी फौज, हमारे हुक्मरान जिस वक्त पाकिस्तान के इक्तदार पर मुसल्लत है, इन्हें चाहिए कि इस वक्त अपने अंदर से उनके हामियों को सफाया करें और इन कातिलों दहशतगर्दों के मुकाबले में वाज़ह स्टैंड लें। पाकिस्तान के अवाम अगर हमारी फौज इनका मुकाबले में स्टैंड लेती है साथ देंगे, हमारे सियासतदानों को भी और करना चाहिए, फौज को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए, फौज को इस प्रेशर से निकालना चाहिए ताकि फौज और हमारे रियासती इदारे इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। जहां तक इमाम बारगाहों के जलने की और मस्जिद के जलने की बात है, रावलपिंडी शहर में और दूसरे शहरों में भी मस्जिद और इमाम बारगाह जलाई गई है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब की हुकूमत और मरकजी हुकूमत को अभी तक तौफीक नहीं हुई है कि जली मस्जिद और इमाम बारगाहों का दौरा करें और वहां जाके लोगों को तसल्ली और तशफी दें, लोगों का ख्याल रखें, उसके साथ मिले, बात करें। इसी तरह से जो वहां पर जुडिशियल कमीशन बनाया गया है, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, ये भी बायस है। पंजाब का वजीर कानून दहशतगर्दों का तर्जमान है, वो दहशतगर्दों का हामी है, और हम अभी तक देख रहे हैं कि हमारी मरकजी और सूबाई हुकूमत के अंदर दहशतगर्दों के बारे में ना गोशा पाया जाता है, या ये उनसे डरते हैं या उनके हामी हैं। ज्यादा जरूरत इस बात की है कि रियासत एक माँ का रोल प्ले करे और यकसा तौर पर जो मसाजिद पर इमाम बारगाह को नुकसान हुआ है इसे पूरा किया जाए और जिन लोगों ने इमाम बारगाह और मसाजिद को आग लगाई है उन्हें गिरफ्तार करके कैफरे के दर तक पहुंचाया जाए।
बिल्कुल आगा, यहाँ पे एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि इमाम बारगाह जलाई गई और हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई उनका जो नुमाइंदा है वो अभी तक इन मस्जिद में नहीं पहुँचा, लेकिन एक मस्जिद जो वहाँ पे जली उसका तमाम मीडिया पर जो है वो ढंडोरा पीटा गया, लेकिन इन मुख्तलिफ शहरों में इमाम बारगाह को जलाया गया, बड़ी बेदर्दी से उनको आग लगाई गई, मोमिनीन जो हैं उनको भी तकालीफ दी गई, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ कालअदम तंजीमें जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है मीडिया पे जो है उनकी आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है, लेकिन जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, पाकिस्तान में अक्सरियत रखते हैं सुन्नी हजरात और अहले तशय्यो, उनको बहुत ज़्यादा कम मौका दिया जाता है कि वो अपना आकर बयान दे सकें या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें, तो इस वाले से जो मीडिया ये किरदार अदा कर रहा है इस वाले से आप क्या कहेंगे?
मेरे ख्याल में इन दहशतगर्दों को और उनके जो हामी हैं और उन कलदम जमातों को जो पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता कई सालों से कत्ल और गरीबी में मुलव्वस रही हैं, इन्हें मीडिया में एक्सेप्शन देनी चाहिए ताकि ये हीरो नबज नफरत ना फैला सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में रेटिंग का जो मुकाबला और मुसाबका है मीडिया और टीवी चैनल के दरमियान, उसकी खातर ये उन लोगों को भी एक्सेस देते हैं जो पाकिस्तान के अंदर कत्ल और गरी का सबब बने हैं और पाकिस्तान के अंदर नाअमनी और इस तरह की मुश्किलात उन्होंने पैदा की हैं। जहां तक ताल्लुक अहले तशय्यो और अहले तसन्नन का, आपकी बात दुरुस्त है कि ये वतन के बावफा बेटे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के वाजदाद ने बनाया था, ये मिलकर इसको बचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी मिसाली वादत और यूनिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। और जो मस्जिद इस बात की जलने की आप बात कर रहे हैं, वो मस्जिद हकीकत में जब मार्केट चली तो उसके नतीजे में मस्जिद को आग लगी, और ये आपके लिए बात हैरानकुन होगी, जिस केमिकल से उस मार्केट को आग लगाई गई उसी केमिकल से इमाम बारगाह को जलाया गया, एक ही तरह का केमिकल इस्तेमाल हुआ है। और ये जो मस्जिद थी इसके जो मुतवली हजरात थे उनका वहां की मार्केट और दुकानदारों के साथ इख्तलाफ चल रहा था, उनसे दुकानें खाली कराने जाते थे, उनके आपस में केसेस चल रहे थे, लिहाजा उस मार्केट को आग लगाई गई जिसके नतीजे में ताकि वो मार्केट खाली हो जाए, और वही केमिकल जो मार्केट को जलाने में इस्तेमाल हुआ वो इमाम बारगाह और मस्जिद को जलाने में इस्तेमाल हुआ, लिहाजा उस मस्जिद को भी उन्हीं लोगों ने आग लगाई जिन्होंने मार्केट को आग लगाई, और मार्केट को आग लगाने वाले और इमाम बारगाह को जलाने वाले एक ही तबका है जिनके पास एक ही तरह का केमिकल था। और लेकिन हम देखते हैं कि हमारे हुक्मरानों ने इस दुखते की तरफ तवज्जो नहीं दी कि उसी मस्जिद के 100 गज के दायरे के अंदर अंदर 6 के करीब अमवालगर मस्जिद जलाई गई हैं। एक मुट्ठी पर ग्रो 100-150 जिनकी तादाद थी, जिनकी उम्र 16 और 20-22 साल के दरमियान थी, जो रावलपिंडी की जुबान भी नहीं बोलते थे, मदरसों के स्टूडेंट और तालिबे इल्म थे, उन वो इमाम बारगाह को और मस्जिद को आग लगाते रहे, पुलिस देखती रही और किसी ने उनको नहीं रोका। मेरे ख्याल में अगर सही तरह से तहकीक होगी तो पता चलेगा कि ये साजिश आपको मालूम होना चाहिए कि जुम्मे के दिन पिंडी शहर की कलदम जमात सिपाही साहबा के 5 मौलवी उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे, वो चंद दिन पहले से बकायदा प्लान कर रहे थे जुलूस अजहार को रोकने के लिए, और उन्होंने बाकायदा ट्विटर के जरिए और फेसबुक के जरिए लोगों को दावत तक दी हुई थी और जो शर्मसंद तकरीर की गई जिसके नतीजे में उन्होंने फितना खड़ा किया और फिर अपने मुसीबे को कामयाब करने के लिए खुद आग लगाई और खुद ही फिर शहर के अंदर नामनी पैदा की और नतीजे पूरे मुल्क को नामुन करने की कोशिश की। तो अगर दुरुस्त तहकीकत की गई और दुरुस्त तहकीक हुई तो लोगों के सामने हकीकत खुलकर सामने आएगी कि आग लगाने वाले फितना लगाने करने वाले वही लोग हैं जो पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाजौड़ में, मोहम्मद में, पिशावर में और दूसरे शहरों के अंदर जो मस्जिदों को उड़ाते रहे हैं, वहाँ शिया और सुन्नियों ने मस्जिदों को नहीं उड़ाया कभी, यही लोग उड़ाते हैं, वहाँ पर कुरान जलाते हैं, वहाँ पर बेगुनाहों को मारते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने रावलपिंडी में मस्जिद इमाम बारगाह को आग लगाई, फिर शहर की दूसरी इमाम बारगाह पर हमले की कोशिश की और मार्केटों को भी आग लगाई, कोहाट में मार्केट को आग लगाई, खुद पाकिस्तान के अंदर लोगों ने देख लिया कि मस्जिदों को, मुकद्दस मकामात को, इमाम बारगाहों को, इबादतगाहों को, मार्केटों को आग लगाने वाला तबका कौन है? ये वही है जो पूरे मुल्क के अंदर नाबनी की आग जला रहा है, और हमारे हुक्मरानों ने अगर होश के नाखून ना लिए तो ये समंदर को ले डूबेंगे। हजारों की बात की है कि इनके मुकाबले में वाज स्टैंड लिया जाए और इस शाम का सर कुचल के रख दिया जाए ताकि पाकिस्तान के अवाम को अमन मिल सके।
अगर यहाँ पे एक मैं जिस तरह कल आपने जिक्र किया कि कल बम धमाका अंचोली में जो किया गया शिया आबादी में, उसकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल कर ली, और अगर हम थोड़े दिन पहले अगर कुछ बयानात को देखें गौर से तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि तालिबान से हमदर्दी रखने वाले कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं पाकिस्तान में, और कुछ अगर कहा जाए कि सियासी तंजीमें भी मौजूद हैं और जो शहादत के लकब तक नवाजती हैं इन दहशतगर्दों को, तो इन दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बातें भी की जाती हैं, उनको शहादत के लकब भी दिए जाते हैं जो मासूम लोगों को आए रोज़ निशाना बनाते हैं, इस वाले से आप क्या मौकफ बयान करेंगे?
देखिए, पहली बात यह है कि इन दहशतगर्दों कातिलों के साथ मुज़ाकरात भी कोई ग्राउंड होने चाहिए, बेस होनी चाहिए। क्या ये मुज़ाकरात अपनी कोई मॉरल ग्राउंड रखते हैं, कोई आईनी और कानूनी ग्राउंड रखते हैं, शरीयत और दीन के मुताबिक है? क्या कातिलों और मुहारबीन और मुस्तदिर बिलाद के साथ शरीयत और दीन के अंदर मुज़ाकरात किए जाते हैं या उनको सजा दी जाती है? क्या पाकिस्तान का आईन और कानून इस बात की इजाजत देता है कि जो लोग मुसल्ला मलेशिया, प्राइवेट मलेशिया बनाकर असला उठाकर बेगुनाहों को कत्ल करे और पूरे मुल्क को नामन करे, उनसे मुज़ाकरात करने हैं? या इन बागियों, इनके साथ बागियों जैसा सलूक करना है और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है? ना ही उसकी अखलाकी ग्राउंड है। लिहाजा ये बेसलेस चीज है, ये हकीकत में डरे हुए बुजदिल हुक्मरान है और ये सियासी इनके अंदर तालिबान के हामी घुसे हुए हैं, और बाद ऐसे ममालिक दुनिया में पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, अरब ममालिक जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, इनका साथ देते हैं, जिस नतीजे में हमारे मुल्क में ना अमनी की आग को जलाया जाता है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस वक्त इन दहशतगर्दों के मुकाबले में स्टैंड लिया जाए और इनका मुकाबला करने के लिए इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। ये मुज़ाकरात से मसला होने वाला नहीं है। अब जबकि दहशतगर्दों ने खुद ऐलान किया है कि हमने कराची के अंदर ब्लास्ट किया है, वो रियासत जिस पर आवाम की जान और माल की हिफाजत जिसकी ड्यूटी और जिम्मेदारियों में से है, वो कहाँ खड़ी है? क्या उसने इन कातिलों के खिलाफ भी स्टैंड लिया है जो इस वतन के बेटों को मार रहे हैं और जिनकी जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है और रियासी इदारों की जिम्मेदारी है? यहाँ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के जो है जनरल सारे खामोश नजर आते हैं, और मेरे ख्याल में ये इंतहाई खतरनाक साइंस और अलामत है। अगर दहशतगर्द और कातिलों के मुकाबले में ऐसी रहा गया फिर पाकिस्तान के अवाम को खुद उठना पड़ेगा ताकि इन दहशतगर्दों से वतन का सफाया, इन वतन दुश्मनों का सफाया किया जाए और इनके मुकाबले में स्टैंड लिया जाए। और हुकूमत इसी अगर गुमगु की हालत में रही तो फिर वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के अवाम मिलकर, मजलूम मिलकर दहशतगर्दों के मुकाबले में सड़कों पर निकलेंगे और इस जहन्नमी सिलसिले को खत्म करके रहेंगे इंशाल्लाह।
आगा यहाँ से आप, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि किस तरह आशूर के वाक़े के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर शिया और सुन्नी के इत्तेहाद का अमली मुजाहरा किया गया है कराची में। अगर आप देखें तो स्वयं के जुलूस में शिया और सुन्नी इकट्ठे वो बाहर रोड पर निकले, लाहौर में मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस्लामाबाद में की गई, और आज भी मौलाना हसन जफर नकवी साहिब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मिल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस वक्त आप शिया और सुन्नी का जो इत्तेहाद है उसको कितनी अहमियत देते हैं और इसकी कितनी अफादियत समझते हैं कि इस वक्त ये इत्तेहाद ज़रूरी है?
देखिए जी, पाकिस्तान में सबसे बड़ी अक्सरियत अहले सुन्नत बरेलवी भाई है, उसके बाद दूसरी बड़ी अक्सरियत अहले तशय्यो है, उसके बाद फिर दूसरे मसालिक आते हैं जो अकलियत में है। लिहाजा ये अक्सरियत मिलकर ईसाई अकलियतें और दूसरी अकलियतें हैं, उन सबको अगर ये मिल जाए तो उनको सिक्योर भी कर सकती है, उनको सपोर्ट भी कर सकती है। लिहाजा शिया और सुन्नी की यूनिटी पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर اسلام دشمن قوتیں شیعہ اور سنی تفرقہ پھیلا کر انہیں آپس میں لڑا کر اپنے مذموم مقاصد کو حاصل کرنا چاہتی ہیں. الحمدللہ پاکستان کے باشعور شیعہ اور سنی علماء اور عوام نے مل کر اس سازش کو ناکام بنا دیا ہے.
بالکل.
اور دشمن جو راولپنڈی کے واقعے کے ذریعے شیعہ اور سنی فرقہ وارانہ فسادات کرانا چاہتا تھا اسے ناکام کر کے آئسولیٹ کر کے تنہا کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن باقاعدہ اہل سنت کے علماء نے پورے ملک میں اعلان کیا کہ ہم نے ان دہشت گردوں کی حمایت میں نکلنے والے احتجاجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور جمعے کا دن دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کی شکست کا دن تھا. پورے ملک میں انتہائی محدود لوگوں کو یہ باہر لا سکے, اور شیعہ اور سنی نے اس کا بائیکاٹ کر کے جمعے کے دن کو یوم عظمت نواز رسول اور یوم رحمت کے طور پر منایا. دنیا نے دیکھ لیا کہ نواز رسول سے عشق کرنے والے اور امن سے محبت کرنے والے کہیں زیادہ تقریب کے مقابلے میں. لہٰذا شیعہ اور سنی جانتے ہیں کہ یہ عناصر صدقہ عوام کو خوفزدہ کر کے گھروں میں بٹھانا چاہتا ہے تاکہ کوئی گھروں سے باہر نہ نکلے, اور ان کے خوف اور ان کی دہشت کی وجہ سے لوگ ڈر کے گھروں میں بند ہو جائیں, اور ان کو اپنا مرضی کا منصوبہ طاقت کے ذریعے پاکستان تحفظ کرنے کا موقع مل جائے. الحمدللہ آزاداری کے جلوس ہوں یا عید میلاد النبی کے جلوس ہوں, یہ دہشت گردوں کے مقابلے میں فرنٹ لائن اور کار رول پلے کر رہے ہیں, یہ ہماری دفاعی لائن ہے. اور انشاءاللہ عاشقان رسول خدا اور عاشقان نواز رسول مل کر انشاءاللہ یزیدیوں کے اس نسل کا مقابلہ کریں گے اور یزیدیوں کو شکست فاش دیں گے, اور یہ پاکستان سے دنیا کو یہ پیغام دے گا کہ پاکستان میں شیعہ سنی اکٹھے ہیں, اور دہشت گردی پھیلانے والے یزیدی اور فرعونی راستے پر چلنے والے ان کے پیروکار پاکستان میں کوئی ان کی عوام میں حیثیت نہیں ہے. یہ مٹھی بھر ٹولا ہے جو غیروں کا ایجنٹ ہے, وطن دشمن ہے, اور انشاءاللہ شیعہ سنی وحدت یونٹی سے
ان شاء اللہ ان شاء اللہ. آغا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اہل بیت ٹی وی کی تمام ٹیم کی جانب سے آغا بہت بہت شکریہ.
شکریہ جی,
اور خصوصی دعاؤں میں آغا یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.